हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, स्वागत है मित्रों ओशो के हास्य जगत में। नव वर्ष की शुरुआत और ओशो के चुटकुलों का साथ, क्या बात है। और बात सिर्फ इतनी सी है कि जीवन ही एक चुटकुला है, जस्ट ए जोक। नव वर्ष का प्रथम दिन ओशो जगत में हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल का प्रथम दिन जाने नव वर्ष की भोर, नव वर्ष की सुबह।
फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन चैप्टर 21 में ओशो कहते हैं, नींद खुलते ही हंसना शुरू कर दो, आंखें बाद में खोलो, इससे पूरी दिनचर्या प्रभावित होगी। भोर के साथ ही हंस लिए तो फिर सारे दिन हंसी आती रहेगी, एक श्रृंखला बन जाएगी, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी, हंसी से और हंसी जन्मती है। अपने प्रवचन मैं धार्मिकता सिखाता हूँ धर्म नहीं मैं, ओशो ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग इस जगत को हंसी से, खुशी से, गीतों से और नृत्यों से भर दें। हम किसी स्वर्ग की तलाश में नहीं हैं, हमारी तो सारी खोज इस बात की है कि अभी और यहीं कैसे स्वर्ग निर्मित किया जाए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात क्या होगा उसमें हमारी उत्सुकता ही नहीं है। जब हम यहाँ अभी स्वर्ग बना सकते हैं तो निश्चित ही अगर हमारी फिर नरक में मुलाकात हुई तो हम वहां भी स्वर्ग खड़ा कर देंगे। सारे धर्म मेरे लोगों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उम्मीद तो यही है कि हम लोग नरक ही पहुंचेंगे। लेकिन मैं उन धर्म के ठेकेदारों को चेता देना चाहता हूं कि मेरे लोगों को नरक में मत भेजना, वरना पछताओगे, क्योंकि वे नर्क को तुम्हारे स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर और रसपूर्ण बना देंगे। तुम्हारे स्वर्ग में रहता कौन है? बुढ़े खुसट संत, महात्मा, सूखे हड्डी हड्डी हो चुके मुनि महाराज, गंदे तपस्वी और नीरस लोग जो मुस्कुराना भी नहीं जानते। मुझे पूरा भरोसा है कि जब मेरे 10 लाख सन्यासी नाचते गाते, गिटार बजाते, हंसते हुए अपने चुटकुलों सहित नर्क में प्रवेश करेंगे तो वहां का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा, पूरी हवा ही बदल जाएगी, और मेरा विचार है कि शैतान भी तुम्हारे आनंद उत्सव में शामिल हो जाएगा, वह भी संन्यास ले लेगा, उसका नाम होगा स्वामी आनंद शैतान।
स्वामी आनंद शैतान, स्वामी आनंद शैतान, स्वामी आनंद शैतान।
पहला प्रश्न, भगवान अजीब लत लगी है रोज सुबह आपके साथ बैठकर हंसने की। रंजन, धर्म जब जीवित होता है तो हंसना प्रार्थना होती। धर्म जब मर जाता है तो हंसने का दुश्मन हो जाता है। हंसना जीवन की धड़कन है। जो धर्म हंसना नहीं जानता है वह बहुत समय हुआ तब मर चुका है। धड़कन बंद हो चुकी है, श्वास चलती नहीं है, लाश पड़ी है, लाश की पूजा चल रही है। धर्म पृथ्वी को रूपांतरित नहीं कर पाता है इसीलिए कि धर्म बार बार हंसने की भाषा भूल जाता है, गीत भूल जाता है, नृत्य भूल जाता है। यह कोई लत नहीं, यह तो तुम्हारी रोज की सुबह की प्रार्थना है, उपासना है। हंसो, जी भर कर हंसो। मेरे देखे अगर कोई समग्र रूपेण हंसना सीख ले कि जीवन की कोई भी परिस्थिति उससे उसकी हंसी न छीन पाए, उसकी मुस्कुराहट बनी ही रहे, सुख में दुख में सफलता में असफलता में, तो कुछ और पाने को नहीं बचता, सब पा लिया। वैसी दशा ही समाधि है, मोक्ष। जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी हंसते हैं, और जिसे हंसना नहीं आता उसकी हंसी भी रोती है। रोती रोती सी ही होती है। हंसी हंसी में भी तुम भेद देखो। उदास लोग भी हंसते मगर उनकी हंसी कड़वा स्वाद छोड़ जाती। मस्त लोग भी हंसते, उनकी हंसी से फूल झरते। मस्ती से हंसो। एक हंसी होती है जो सिर्फ अपने दुख को भुलाने के लिए होती, उस हंसी का कोई बड़ा उपयोग नहीं, धोखा है, आत्मवंचना है। एक हंसी है जो तुम्हारे भीतर उठ रहे आनंद से, तुम्हारे भीतर उठ रहे गीत से झरती है। भीतर कुछ भरा भरा है, इतना भरा है जैसे बदली भरी हो वृष्टि के जल से, तो झुकेगी, कहीं बरसेगी, भिगाएगी जमीन को, पहाड़ों को, वृक्षों को नहलाएगी। उसे हल्का होना ही होगा। जो हंसी तुम्हें हल्का कर जाए, जो हंसी तुम्हारे आनंद का फैलाव हो, जो हंसी बांटती हो कुछ, वह हंसी पुण्य है। एक मित्र ने पूछा है, सत्य निरंजन ने पूछा है कि भगवान, हाल ही में मैं मराठी साहित्य के एक ख्यातिनाम लेखक आचार्य अत्रे की जीवन कथा पढ़ता था। उसमें एक जगह वे कहते हैं, इस दुनिया में दुख सहने का हास्य विनोद ही एक राजपथ है। हास्य विनोद सबसे बड़ा मानव धर्म है। मनुष्य के कल्याण के लिए आज तक अनेक अवतारी पुरुषों ने भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना की है। किसी का धर्म दया पर आधारित है तो किसी का समता पर, किसी का सत्य पर तो किसी का अहिंसा पर। लेकिन आज तक ऐसा कोई धर्म संस्थापक नहीं हुआ कि जिसने विनोद के वेदांत पर आधारित हंसते खेलते हुए आनंदमय धर्म की स्थापना की हो। काश आज वे जीवित होते तो आपके रूप में ऐसा धर्म अवतरित होते देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता। भगवान हास्य विनोद की ऐसी क्या खूबी है। आचार्य अत्रे के अंतिम दिनों में मेरा उनसे मिलना हुआ था। उनकी बेटी सिरीस पई मेरी शिष्य है। उसका बहुत आग्रह था कि इसके पहले कि उसके पिता जीवन छोड़े, देह छोड़े, मेरा उनका मिलना हो जाए। उनकी भी बड़ी आकांक्षा थी तो मैं उन्हें देखने गया था। बिस्तर पर थे, अंतिम घड़ियां थी। यह बात चली थी जो बात सत्य निरंजन ने पूछी। उन्होंने यही मुझसे कहा था कि दुख सहने का हास्य विनोद एक राजपथ। और मैंने उनसे कहा था इस घड़ी में जब आप जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे, मैं कोई विवाद खड़ा करूं उचित नहीं, लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि फिर मेरे हास्य विनोद में और आपके हास्य विनोद में जमीन आसमान का अंतर है। आप कहते हैं हास्य विनोद दुख सहने का राजपथ है, फिर तो धोखा हुआ, फिर तो अफीम का नशा हुआ। तो कोई अफीम लेके दुख को भुला देता है, कोई शराब पी के दुख को भुला देता है, कोई किसी और ढंग से। तो तुमने हंस के भुला दिया, हास्य विनोद में भुला दिया, मगर भुलाने से कोई चीज मिटती? काश इतना आसान होता कि हम भुला देते किसी बात को और वो मिट जाती, तब तो सभी बुद्ध हो जाते, कभी के बुद्ध हो जाते। बात इतनी आसान नहीं। हम भुला के बैठ जाएं थोड़ी देर को, अपने को भरमा लें, लेकिन जिससे हमने भुलाया है वह लौटेगा। भुलाया ही है, मिटा तो नहीं, भीतर पड़ा है, क्षण भर को छिपा लिया है, ओठ में हो गया है, पर्दा डाल दिया है। जैसे किसी ने घाव के ऊपर फूल रख दिया हो, घाव के ऊपर फूल रखने से घाव थोड़ी मिट जाएगा। हाँ, फूल रखने से शायद किसी को दिखाई ना पड़े, शायद तुम भी थोड़ी देर को धोखा खा जाओ, आत्मवंचना में पड़ जाओ, मगर घाव जब तुम भूले हो फूल रखकर तब भी बढ़ रहा है, फैल रहा है, उसमें मवाद इकट्ठी हो रही, वो नासूर बनेगा, वो कैंसर भी बन सकता है। मेरे हास्य विनोद में और आचार्य अत्रे के हास्य विनोद में बुनियादी भेद है। वे कहते हैं दुख को भुलाने का, दुख सहने का, और मैं कहता हूं आनंद को प्रकट करने का, आनंद को अभिव्यक्ति देने का। पहले आनंद चाहिए, तब तुम्हारी हंसी में धर्म की सुगंध होती, तब तुम्हारे रोने तक में धर्म की सुगंध होती है। हंसने की तो बात छोड़ो, तुम बैठो तो नृत्य होता है, तुम मौन रहो तो उपनिषद झरते, तुम ना कहो तो भी परमात्मा तुमसे प्रकट होता है, तुम चलो उठो और तुम्हारे चलने उठने में भी अलौकिक प्रसाद होता है, एक सौंदर्य होता है जो इस पृथ्वी का नहीं। फिर हंसने की तो बात ही और। हंसना तो बहुत अद्भुत घटना है, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर कोई पशु पक्षी हंसता नहीं। किसी पशु पक्षी की क्षमता नहीं हंसने की, हंसने के लिए विवेक चाहिए, बोध चाहिए, हंसने के लिए समझ चाहिए। जितनी समझ गहरी होगी उतनी ही गहराई तुम्हारे हंसने में भी आएगी। इसलिए रंजन मत ऐसा सोच कि अजीब लत लगी, लत नहीं है यह उपासना है, सत्संग है। मैं एक जागते हुए, जीते हुए, हंसते हुए, नाचते धर्म को पृथ्वी पर फैलता हुआ देखना चाहता हूं, ऐसा धर्म जो जीवन को अंगीकार करे, आलिंगन करे, जो जीवन के प्रति परमात्मा का अनुग्रह प्रकट करे, जो जीवन का त्यागी ना हो, जो जीवन का निषेध ना करता हो, जिसमें जीवन के प्रति अहोभाव हो, जो धन्यभागी समझे अपने को, जो हल्का फुल्का हो, भारी भरकम नहीं। पुराने सब धर्म बहुत भारी भरकम सिद्ध हुए, शुरुआत में तो ऐसे न थे, मगर यही तो दुर्भाग्य कि आदमी के हाथ में जो चीज पड़ जाती वही बिगड़ जाती। महावीर के साथ तो धर्म हंसता हुआ रहा होगा, बुद्ध के साथ तो हंसता हुआ रहा होगा, जीसस के साथ तो हंसता हुआ रहा होगा, नानक के साथ तो हंसता हुआ रहा होगा। अगर कबीर के साथ ना हंसा होगा धर्म तो फिर किसके साथ हंसेगा? फरीद के साथ ना हंसा होगा तो फिर किसके साथ हंसेगा? लेकिन पीछे जो लोग आते वे करीब करीब विपरीत होते। हर धर्म को जन्म देने वाले व्यक्ति के आसपास पंडितों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। मैं बहुत सावधान हूं, इसलिए पंडितों को यहां टिकने ही नहीं देता, पंडितों को प्रवेश ही नहीं है। पंडित आ जाएं तो उन्हें ऐसा झकझोरता हूं, ऐसी उनकी पिटाई होती कि वो भाग ही जाते, फिर वो लौट के कभी दोबारा नहीं आते। पंडितों से मैं सावधान हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे मैं जो कह रहा हूं वो पंडितों के हाथ में पड़े, क्योंकि उन्होंने सारे धर्मों को नष्ट किया है। पंडित गुरु गंभीर होता है, उसे कुछ सत्य का तो पता होता नहीं, उसे कुछ जीवन का अनुभव तो होता नहीं, उसके पास शब्द होते हैं, तर्क जाल होते हैं, और तर्क जाल और शब्दों का वो धनी होता है। वो ऊंची ऊंची बातें करता है, बड़े गहरे और उलझे सिद्धांतों की चर्चा करता है, उन सिद्धांतों की चर्चा करना और हंसने का मेल नहीं हो सकता। हंसना और ब्रह्मज्ञान की उलझी उलझी बातें जान के उलझाता है, क्योंकि लोगों पर उलझी बातों का प्रभाव पड़ता है। जो बात लोगों की समझ में आ जाए वो समझते हैं उसमें क्या रखा है, जो बात लोगों की समझ में ना आए लोग समझते हैं होगा कुछ रहस्य। लोग भी बहुत अद्भुत हैं, सत्य तो सीधा सरल है, झूठ होते हैं इर्छे तिरछे, झूठ होते हैं उलझे हुए पहेलियों जैसे। सत्य में क्या पहेली है? सत्य तो खुले आकाश जैसा है, कोरी किताब जैसा है, बेपढ़ा लिखा पढ़ ले, कोरी किताब में पढ़े लिखे होने की क्या जरूरत है। सत्य तो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए, बाहर भीतर दूर नहीं है। जैसे मछली सागर में, ऐसे तुम सत्य में हो। लेकिन पंडित सत्य को बहुत दूर बताता है, दूर कहीं आसमान पर, बहुत दूर, लंबी यात्रा, नक्शे देता है, मार्ग समझाता है। सब नक्शे व्यर्थ, सब मार्ग झूठे, क्योंकि सत्य वहां है जहां तुम हो। जहां तुम हो वहीं जाग जाओ, बस वहीं जरा होश पूर्वक देख लो, वहीं जरा टटोल के देख लो और तुम परमात्मा को पा जाओगे। न कहीं जाना, न काशी, न काबा, न कैलाश, न कुरान में, न बाइबल में, न गीता में, अपने भीतर जाना है। वहीं से उठेगा कुरान, वहीं से उठेगी गीता, वहीं से जगेंगे उपनिषद, वहीं बज रही है बांसुरी कृष्ण की, अभी भी बज रही है, सदा बजती रही है। तुम्हारे भीतर अनाहत नाद हो रहा है, मगर पंडित अगर दूर की बात ना करे तो पंडित की जरूरत क्या है। पंडित अगर उलझी बात ना करे तो तुम पंडित को मूल्य क्या दोगे। पंडित का धंधा है उलझाए, सुलझी बातों को जो उलझा दे उसका नाम पंडित, सीधे साफ को जो इर्छा तिरछा कर दे उसका नाम पंडित। जिसके पास जाके तुम गुरु गंभीर हो के लौटो उसका नाम पंडित। गए थे तो शायद को समझ भी थी, लौटो तो वो भी गमा के आ जाओ, उसका नाम पंडित। गए थे तो थोड़ा बोध था और बुद्धू हो के लौटो, उसका नाम पंडित। हां, कूड़ा करकट पकड़ा देगा, सिद्धांतों के जाल पकड़ा देगा, ऐसे जाल जिनसे कुछ हल नहीं होता, जालों में से जाल निकलते आते, ऐसे उत्तर पकड़ा देगा जिनसे हजार प्रश्न खड़े होते। तुम एक प्रश्न पूछते थे, वो ऐसे उत्तर पकड़ाएगा कि जिनसे हजार प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा एक प्रश्न तो अपनी जगह खड़ा है, सो खड़ा ही रहेगा, अब उसके उत्तर तुम्हें दिक्कत में डालेंगे। ज्ञानी और पंडित में भेद है। ज्ञानी वह है जिसने जाना, पंडित वह है जो उधार बातों को दोहरा रहा है। पंडित के हाथ में धर्म पड़ जाता है कि बस उसकी हंसी खो जाती है, मुस्कुराहट खो जाती है। जिस दिन धर्म की हंसी खो जाती है उसका नृत्य खो जाता है, पैर में घूंघर नहीं बचते, हाथ में बांसुरी नहीं रह जाती, बस उसके बाद फिर लाश है, फिर पूजो, फिर करते रहो हवन यज्ञ, हाथ कुछ भी ना लगेगा, बस राख ही राख, फिर राख का ही प्रसाद है, फिर राख को तुम चाहे विभूति कहो, जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे विभूति कहने से राख कुछ विभूति नहीं हो जाती। मगर कैसे कैसे लोग राख को विभूति कह रहे हैं, राख को सिर पे डाल रहे हैं, माथे पे लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बड़ा पुण्य कर्म किया होगा पिछले जन्मों में, इससे ये राख माथे पे लगी, सिर पे पड़ी, पुण्य कर्म से राख बरसती, न मालूम किन पापों का फल भोग रहे हो, लेकिन कहते हो विभूति। अच्छे अच्छे नाम व्यर्थ की बातों को हम दे लेते। नहीं रंजन, यह कोई लत नहीं, हंसो जी भर कर हंसो, और हंसी के संबंध में कंजूसी मत करना। लोग बहुत कंजूस हो गए, हर चीज में कंजूस हो गए, उन चीजों में भी कंजूस हो गए हैं जिनमें तुम्हारा कुछ खोता नहीं, उन चीजों में भी कंजूस हो गए हैं जिनमें कौड़ी नहीं लगती, उन चीजों तक में कंजूस हो गए हैं जिनको बांटने से वे चीजें बढ़ती घटती नहीं, जीवन का एक अद्भुत नियम समझो। बाहर के जगत की जितनी चीजें हैं बांटोगे तो घट जाएंगी, भीतर के जगत की जितनी चीजें हैं बांटो तो बढ़ जाएंगी। भीतर का अर्थशास्त्र अलग, बाहर ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। बाहर का अर्थशास्त्र अलग। एक भिखमंगे ने मुल्ला नसरुद्दीन से भीख मांगी, उसी दिन उसे लॉटरी मिली थी, तो नसरुद्दीन मौज में था, एकदम फिल्मी गाना गाता हुआ चला आ रहा था घर की तरफ, नोट ही नोट तैर रहे थे चारों तरफ, आंखों में नोट, जेब में नोट, आत्मा में नोट, नोट ही नोट थे। इसी वक्त इसने मांगा, आज कृपणता ना थी, और ये आदमी भला भी लगा, देखने से सुसंस्कृत लगता था, चेहरे से कुलीन लगता था, वस्त्र यद्यपि फटे थे पुराने थे मगर कभी शानदार रहे होंगे, कीमती रहे होंगे। 100 रुपए का नोट एकदम मुल्ला ने उसे दिया और पूछा कि मेरे भाई, तुम्हारी भाषा से, तुम्हारे खड़े होने के ढंग से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे से कुलीनता टपकती, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? उसने कहा कि घबराओ मत, अगर ऐसी 100-100 रुपए देते रहे तो यही हाल तुम्हारा हो जाए, इसी तरह मेरा हुआ। अगर मेरी मानो तो, उसने कहा, जरा सोच समझ के देना, मैं अनुभव से कह रहा हूं। बाहर तो बांटोगे तो कितना ही हो तो भी बढ़ जाएगा, एक दिन तुम भिखमंगे हो जाओगे। बाहर कोई खजाना अकूत नहीं होता, कुबेर का भी नहीं, लेकिन भीतर का एक मजा है, भीतर अकूत खजाना है। तुम अगर प्रेम दो तो प्रेम घटता नहीं, बढ़ता है। तुम अगर गीत गाओ तो गीत घटते नहीं, बढ़ते। तुम जितना गाओ उतनी गाने की क्षमता प्रगाढ़ होती, उतना तुम्हारा कंठ सुरीला होता। तुम हंसो, बांटो हंसी के मोती, और तुम कुछ संकोच ना करना कि बांटा तो कहीं हंसी बट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हंसी से हम खाली हो जाएं। नहीं, जितना हंसोगे उतना भरोगे। और दूसरी बात भी समझ लो कि अगर डर के कारण, कंजूसी के कारण हंसी को रोका तो हंसी मर जाएगी, धीरे धीरे तुम हंसना भूल ही जाओगे। लोग बाहर के अर्थशास्त्र को भीतर भी लागू कर देते और तब उनके जीवन से कुछ चीजें खो जाती। प्रेम तक करने में लोग डरते, प्रेम देने में लोग डरते कि कहीं ऐसा ना हो कि बस कोई ले ले और हम खाली के खाली रह जाएं। उत्तर दे न दे पहले तय कर लेते हैं कि प्रेम का उत्तर भी मिलेगा या नहीं। यही नहीं, ये भी तय कर लेते हैं कि जितना हम देते हैं उससे ज्यादा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वही धंधे का नियम है, जितना हम दें उससे ज्यादा मिले तो धंधा, नहीं तो फायदा क्या। इसी तरह तो लोग, तुम देखते हो चारों तरफ जिनकी क्षमता थी कि जो प्रेम के आगार बनते, जिनकी क्षमता थी कि जिनके भीतर से आनंद की फुलझड़ियां फूटती, जिनकी क्षमता थी कि जिनके भीतर समाधि का संगीत बजता, वो सब सुने सुने खाली खाली रिक्त उदास। कारण, बाहर के अर्थशास्त्र को भीतर लगा रहे हैं, भीतर और बाहर के नियम उल्टे होते। जो बाहर सच है वो भीतर बिल्कुल सच नहीं होता, और जो भीतर सच है वो बाहर सच नहीं होता। बाहर के नियम को समझ के तुम समझ लेना कि उससे ठीक उल्टा नियम भीतर लागू होता है। बांटोगे तो बढ़ेगा, बचाओगे घटेगा। अगर बिल्कुल बचा गए सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तुम भूल ही जाओगे, हंसना ही भूल जाओगे। ऐसे बहुत लोग जो हंसना भूल गए, वो अगर मुस्कुराते भी हैं, तुम देख सकते हो कि सिर्फ ओंठों का अभ्यास कर रहे हैं, व्यायाम। कहीं कोई मुस्कुराहट नहीं, हृदय में कहीं कोई कली नहीं खिलती, कोई गंध नहीं उठती, चिपकाई हुई मुस्कुराहट, खींच रहे हैं, तान रहे हैं ओंठों को, नेतागण जैसे मुस्कुराते। नेतागणों तक तो सभी झूठा है, हंसना झूठा, रोना झूठा, राजनीति का धंधा झूठा है, झूठ की संपदा ही वहां चलती। एक नेताजी की मगरमच्छ से बातचीत। यार मगर थोड़े आंसू उधार दे दो अगर, तो हम देश की दुर्दशा पर बहाएं। सूखी आंखों से मगर ने कहा, आपने बड़ी देर कर दी हुजूर, सारा स्टॉक तो दूसरी पार्टी वाले ले गए। कंजूसी ना करना रंजन, और हम बड़े कृपण हैं, कंजूसों से पृथ्वी भरी हुई है, तरह तरह के कंजूस। और मैं पैसे धन इत्यादि की बात नहीं कर रहा हूं, जो संपदा बांटने से बढ़ती उसमें भी कंजूस। कंजूसी ऐसी है कि लोग मरने को राजी हैं अगर कुछ बचाने का उनको मौका मिले, जीवन देने को राजी कुछ बचाने का मौका मिले। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात एक आदमी ने एकांत में पकड़ लिया, छाती पर पिस्तौल लगा दी और कहा कि रख दो जो भी तुम्हारे पास हो, चाबी भी दे दो, या तो सब दे दो जो है और नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। मुल्ला ने कहा कि भाई एक दो मिनट सोचने दो। वो आदमी भी थोड़ा हैरान हुआ, उसने कहा मैंने बहुत लोगों को लूटा, मगर जहां जिंदगी और मौत का सवाल हो वहां कोई सोचने की बात नहीं करता। मुल्ला ने कहा कि बिना सोचे मैं कोई काम नहीं करता। आंख बंद करके सोचा और फिर कहा कि ठीक है तुम गोली मारो। वो आदमी और चौंका, पहली दफा जिंदगी में उसके हाथ ढीले पड़े कि इस आदमी को मारना कि नहीं मारना। उसने कहा भाई मुझे भी सोचने दो, तुम आदमी कैसे हो। अरे थोड़े से पैसों के पीछे। मुल्ला ने कहा कि सवाल यह है कि पैसे मैंने बचाए हैं बुढ़ापे के लिए, पैसे चले गए तो फिर मैं मुश्किल में पड़ूंगा। अरे जिंदगी का क्या है, यूं मुफ्त में मिली थी, मुफ्त में जाएगी, एक दिन जानी। मैं तत्वज्ञानी हूं, मुल्ला ने कहा, मैं कोई छोटा मोटा ऐसा वैसा एरे गेरे नथु खेरे उनमें मेरी गिनती मत करना, मैं तत्वज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञान जानता हूं। अरे जीवन का क्या, ये तो खेल है, अभिनय है, ये तो लीला है भगवान की, दिया है फिर मिलेगा। मगर जो मैंने बुढ़ापे के लिए रखा है बचा के, वो मैं नहीं दे सकता, वो लीला नहीं है, वो खेल नहीं, वो मामला गंभीर है। और फिर जीवन मुफ्त मिला है, मुफ्त तो जा नहीं, आज नहीं कल खत्म होना है, ले ले तू ही ले ले। वो आदमी कहते हैं भाग गया, ऐसे आदमी को क्या मारना। अरे मारे को क्या मारना, मरे मराए को क्या मारना, ये तो स्वर्गीय है ही। कंजूसी ना करना। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया दो गुना बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न कि बाप जी ने जीवन भर बड़ा कष्ट पाया, न तरीके से पहना न खाया, मैं आज कम से कम जी भर उड़ा तो सकूंगा कफन परंतु कान में पड़ते ही लड़के की बात बापजी ने खोली धीरे से आंख और बोले कि बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची, इस कफन के आधे से मेरी लाश ढकना और आधा जरा संभाल के रखना, कपड़ा है रखा रहेगा बेकार नहीं जाएगा, तू जब मरेगा तेरे काम आएगा। हंसो जी भर के हंसो, मेरा आश्रम हंसता हुआ होना चाहिए। हंसी यहां धर्म है, यह आनंद उत्सव है, यहां उदास होकर नहीं बैठना, यह कोई उदासीन साधुओं की जमात नहीं है। उदासीनता को मैं रोग मानता हूं, साधुता नहीं, रुग्णता। जो उदासीन है उसकी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। प्रफुल्लता स्वास्थ्य का लक्षण है, प्रफुल्लित हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में हंसी की किरणें फैलेंगी, चकित होगे कि कितना हंसने को है। खुद के जीवन में हंसने को है, औरों के जीवन में हंसने को है, चारों तरफ हंसने ही हंसने की घटनाएं। वो तो हम देखते नहीं, कंजूस हैं कि कहीं हंसना ना पड़े, तो हमने देखने ही बंद कर दिया। नहीं तो चारों तरफ प्रतिपल क्या क्या नहीं घट रहा है, हर चीज हंसे की हंसने की है। कोई ऐसे ही थोड़ी कि कभी कभी कोई केले के छिलके पे फिसल के गिर पड़ता है, हर आदमी यहां केले के छिलके पे फिसल रहा है, सड़कें केले के छिलकों से भरी पड़ी। यहां तुम्हारा आदमी को गिरते देखोगे, और ऐसा नहीं कि दूसरे ही गिर रहे हैं, दूसरों पे हंसे तो वो हंसी ठीक नहीं, काफी नहीं, पूरी नहीं, सम्यक नहीं, तुम अपने को भी गिरते देखोगे। और हंसी तो तुम्हें तब आएगी कि उन्हीं छिलकों पर गिर रहा है जो तुम्हें ने बिछाए, कोई और भी नहीं बिछा गया, उन्हीं गड्ढों में गिर रहे हो जो तुम्हें ने बिछाए। मुल्ला नसरुद्दीन बैठा था एक स्टेशन पर, ट्रेन लेट थी, जैसा कि नियम है। दो चार बार उठ के भी गया, स्टेशन मास्टर को पूछा भी, मगर जब जाए तभी और लेट होती जाए। आखिर उसने कहा कि मामला क्या है, क्या ट्रेन पीछे की तरफ सरक रही? लेट होना भी समझ में आता, मगर और लेट होता जाना, क्या ट्रेन उस तरफ जा रही, फिर आएगी कैसे? और जब हर गाड़ी को लेट ही होना है तो टाइम टेबल किस लिए छापते हो? उस स्टेशन मास्टर ने कहा टाइम टेबल नहीं छापेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी लेट? नसरुद्दीन ने कहा ये बात जस्ती, ये बात पते की कही। फिर उसने कहा आप कोई फिक्र नहीं, अब मैं बैठ के राह देखता हूं। बैठ के वो राह देखने लगा, बीच बीच में हंसे। कभी कभी ऐसा झिड़क दे कोई चीज हाथ से, कभी कोई अच्छी छी, वो स्टेशन मास्टर थोड़ी देर देखता रहा कि कर क्या रहा, बार बार आता था वही अच्छा था पूछने, अभी और उत्सुकता जगा रहा, किसी चीज को हाथ से सरकाता है, किसी को छींची कहता है, कभी कुछ, और फिर बीच बीच में हंसता, ऐसा खिलखिला के हंसता। आखिर वाया उसने कहा कि भाईजान, बड़े मियां, आप मुझे काम ही नहीं करने दे रहे, मेरा दिल यहीं लगा, इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, ट्रेन पटरी से उतर जाए कि दूसरी पटरी पे चढ़ जाए कि दो ट्रेनें टकरा जाए, जब तक मैं आपसे पूछ न लूं मुझे चैन नहीं, या तो आप जरा दूर जाके बैठो। आप कर क्या रहे हो? आप हंसते क्यों हो बीच बीच में? कुछ भी तो नहीं हो रहा है यहां, गाड़ी लेट है, सब सन्नाटा छाया हुआ है, रात आधी हो गई, सब यात्री बैठे बैठे सो गए हैं, कुली कबाड़ी भी विश्राम कर रहे हैं, तुम हंसते किस लिए हो बीच बीच में? उसने कहा कि मैं बैठे बैठे क्या करूं, अपने को कुछ चुटकुले सुना रहा हूं। उसने कहा चलो ये भी समझ में आ गया कि चुटकुले, ये बीच बीच में छी छी और ये हाथ से हटाना ये क्या करता? तो उसने कहा जो चुटकुले मैं पहले सुन चुका हूं वो मैं हटो रास्ते पे लगो, उनको ऐसा हटा देता हूं, बीच बीच में घुस आते। हंसो बहाने मिले तो ठीक, न बहाने मिले तो कुछ खोजो, मगर जिंदगी तुम्हारी एक हंसी का सिलसिला हो, हंसी तुम्हारी सहज अभिव्यक्ति बन जानी चाहिए। मेरा सन्यासी हर हालत में मस्ती और आनंद को अभिव्यंजना दे, यही मेरी आकांक्षा है। सुंदर लत है, अगर लत है तो सुंदर है, प्यारी शुभ है, बड़ी धार्मिक लत है।
आइए थोड़ी हास्य की औषधि पीते हैं, ओशो के ही हाथों से उन्हीं की आवाज में, अनहद में विश्राम प्रवचन 8 से कुछ चुटकुले।
आखिरी सवाल, भगवान मेरे पिताजी आप पर बहुत नाराज हैं, आपके विचारों से तो सहमत है, यहां तक कि सन्यास भी लेना चाहते, नाराजगी का कारण है आपके चंदूलाल मारवाड़ी के लतीफे। मेरे पिताजी मारवाड़ी हैं, उनका नाम चंदूलाल है, विजय ये तो बड़ा तुमने अच्छा किया याद दिला दी, ये 8-10 दिन से मैं चंदूलाल को बिल्कुल भूले ही हुआ था। और तुम्हारे पिताजी हैं सो तो स्वभावतः अब कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारे पिताजी के लिए कुछ लतीफे। न्यायाधीश ने अदालत के कटघरे में खड़े सेठ चंदूलाल से कहा, इतनी छोटी सी बात के आधार पर सेठ तलाक नहीं दिया जा सकता, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण भी है जिनसे पता चले कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं? चंदूलाल ने कहा, एक नहीं हजारों प्रमाण है माई लाश, कल की ही रात की बात है, ये रात को 3 घंटे गायब रही और पूछने पर सफाई पेश करने लगी कि मैं अपनी सहेली गुलजान के साथ सिनेमा देखने गई थी। जज ने पूछा, मगर तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही थी? चंदूलाल ने कहा क्योंकि कल रात को मैं तो खुद ही गुलजान के साथ सिनेमा देखने गया। अब आप स्वयं सोचिए कि ये औरत मेरे साथ सरासर धोखा कर रही है या नहीं। तुम्हारे पिताजी हैं तो मैं क्या करूं विजय, आदमी वो गजब के। फजलू अपने साथ पढ़ने वाली रीता नामक एक लड़की पे फिदा हो गया। एक दिन ये पता लगा कि वह किस मोहल्ले में रहती, फजलू वहां जा पहुंचा। अब मुश्किल ये थी कि उसका घर कैसे ढूंढा जाए। फजलू ने सामने से चले आ रहे एक वृद्ध सज्जन से पूछा, दादाजी क्या आपको पता है कि रीता कहां रहती। मैं उसका भाई हूं लेकिन 5-6 सालों के बाद इस शहर में आया हूं, अतः पहचान नहीं पा रहा हूं कि उसका मकान कौन सा है, सब बदला बदला नजर आ रहा है। उस बूढ़े आदमी ने फजलू के कंधे पर हाथ रख के कहा, तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई बेटे, मैं रीता का बाप सेठ चंदूलाल मारवाड़ी हूं। एक मोटा व्यक्ति समुद्र तट पर बैठा सामने की ओर देख रहा था, जहां जवान लड़कियां अल्प वस्त्रों में व्यायाम कर रही थी। पास से गुजरते हुए दूसरे मोटे व्यक्ति ने कहा, आपका क्या ख्याल है सेठ चंदूलाल, क्या इससे वजन घटता है। चंदूलाल ने जवाब दिया, क्यों नहीं, इसी दृष्टि को देखने के लिए तो मैं रोज सुबह 3 मील चलकर आता हूं। अरे वजन क्यों नहीं घटेगा, घटता है। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी ने अपने दोस्त ढब्बू जी को बताया कि मेरी पत्नी कपड़ों के पीछे दीवानी, जब देखो तब कपड़ों की मांग करती रहती, सुबह से शाम तक एक ही रट लगाए रखती कि नए कपड़े चाहिए। मैं तो ये सुन सुनकर घन चक्कर हुआ जा रहा हूं, शादी को 20 साल हो गए, एक दिन ऐसा नहीं होता जब वो कपड़ों की रट न लगाती हो, बस कपड़े कपड़े कपड़े। ढब्बू जी बोले, आश्चर्य की बात है, आखिर वह इतने कपड़ों का करती क्या है। चंदूलाल ने कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक एक भी कपड़ा खरीद कर दिया नहीं। अरे जब दहेज में मिले वस्त्रों में सब आराम से चल रहा है तो नए कपड़े में भला क्यों पैसा व्यर्थ किया जाए। कल फिर मुझसे कहने लगी कि अब तो कपड़े नाम मात्र को ही बचे हैं, पड़ोस के छोकरे खिड़की में से झांक झांक के तमाशा देखते, अब तो कुछ करो, मोहल्ले भर में हंसी होती। ढब्बू जी ने पूछा, तो फिर तुमने कुछ किया। सिर चंदूलाल बोले, और भला क्या करता, यही किया कि एक पुरानी साड़ी का पर्दा बना के खिड़की पर लटका दिया। पहुंचे हुए व्यक्ति हैं तुम्हारे पिताजी विजय। नसरुद्दीन ऑफिस गया था, फजलू स्कूल, गुलजान घर में अकेली थी। दोपहर को नसरुद्दीन के दोस्त सेठ चंदूलाल आए और धीरे धीरे बातों ही बातों में 1,000 रुपए के बदले में गुलजान को अपना स्त्रीत्व बेचने के लिए फुसलाने लगे। कुछ समय तक आना करने के बाद गुलजान तैयार हो गई। चंदूलाल ने उसे नगद 1,000 रुपयों का बंडल थमा दिया। शाम को नसरुद्दीन ने ऑफिस से आते ही पूछा, अरे आज क्या मेरा दोस्त चंदूलाल आया था, उसकी छड़ी वहां कोने में टिकी, लगता है छड़ी भूल गया। गुलजान को तो पसीना छूट गया, मगर अब क्या कर सकती थी, कोने में छड़ी टिकी तो थी। बोली, हाँ आज दोपहर को आया था। मुल्ला ने कहा, गजब हो गया, मारवाड़ी से ऐसी आशा न थी, क्या वह पूरे 1,000 रुपए दे गया। यह सुनकर तो गुलजान पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, घबराहट में उसके मुंह से निकल गया, हाँ पूरे 1,000। नसरुद्दीन ने खुशी से उछलते हुए कहा, मान गया मैं भी कि मारवाड़ी भी वायदे के पक्के होते, पिछले महीने उसने 1,000 रुपए उधार लिए थे और वचन दिया था कि ठीक 1 माह में आज की ही तारीख को लौटा दूंगा। तुम घबराओ मत विजय, अपने पिताजी को घर लौट के कहना कि मैं तो चंदूलाल के लतीफे कहना बंद नहीं कर सकता, एक तरकीब है आसान, वो आ जाए और सन्यासी हो जाए, उनका नाम बदल दो। आज इतना।
फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन, चैप्टर 21 में ओशो कहते हैं, हास्य में अद्भुत क्षमता है, स्वास्थ्य प्रदान करने की और ध्यान में डुबोने की भी। वह निश्चित ही आंतरिक रसायन में और मस्तिष्क की विद्युत तरंगों में परिवर्तन लाता है, प्रतिभा को प्रभावित करता है। तुम ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हो। मन के वे हिस्से जो सोए पड़े थे अनायास जाग उठते हैं। हंसी तुम्हारे दिलो दिमाग की गहराइयों में प्रवेश कर जाती है। हंसने वाले लोग आत्महत्या नहीं करते, उन्हें दिल के दौरे नहीं पड़ते, वे अनजाने ही मौन के जगत को जान लेते हैं, क्योंकि हंसी के थमते ही अचानक मन भी थम जाता है, स्तब्ध रह जाता है। और जैसे जैसे हंसी गहरी जाने लगती है, उतनी ही गहन शांति भी छाने लगती है। अब तो चिकित्सा विज्ञान भी कहने लगा है कि हंसी मनुष्य को प्रकृति से भेंट में मिली सर्वाधिक गहरी औषधि है। यदि बीमारी के दौरान हंस सको तो जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, और अगर स्वस्थ रहकर भी न हंस पाए तो शीघ्र ही स्वास्थ्य खोने लगेगा और बीमारी घेर लेगी। अप्रैल 2005 के ओशो टाइम्स पत्रिका के संपादकीय में माँ अमृत साधना लिखती हैं, हाल ही में अमेरिका के डॉक्टर डेविड एस सोबेल का एक लेख पढ़ा, भरपूर हास्य अच्छा स्वास्थ्य। ये डॉक्टर अमेरिका में एक संस्थान में काम करते हैं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इस संस्थान के निष्णात डॉक्टरों ने आदमी के स्वास्थ्य का अनुसंधान किया और इस अनुसंधान के निष्कर्ष प्रकाशित किए।
इन निष्कर्षों को पढ़कर ऐसा लगेगा कि ओशो ही बोल रहे हैं, लेकिन उनका ओशो से कोई लेना देना नहीं है। वे तो अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर बोल रहे हैं। उनके निष्कर्ष यही दिखा रहे हैं जो ओशो जिंदगी भर कहते रहे, जिसके प्रयोग वे करते रहे, वही इन चिकित्सकों का सार है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के निष्कर्ष देखिए।
खिलखिलाकर हंसना, ठहाके मारना, लोटपोट होना इत्यादि क्रियाएं स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी हैं। आधुनिक विज्ञान यह भी कहता है कि अकारण हंसना आरोग्य की कुंजी है। अगर लोगों के बीच का फासला कम करना हो तो दिल खोल कर हंसिए। विक्टर बोज नाम के हंसोड़ अभिनेता का सटीक कथन है, हंसना दो लोगों के बीच का न्यूनतम अंतर है। हास्य एक टॉनिक है जो मुफ्त में शरीर और मन का स्वास्थ्य वर्धन करता है। हंसना हमारे मनुष्य होने का सबूत है, क्योंकि अकेला मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। जब भी संकट का समय होता है तो सारे पशु दो ही बातें करते हैं, भागना या लड़ना। सिर्फ मनुष्य तीसरी बात कर सकता है, हंसना। इस अन्वेषण में यह पाया गया है कि हास्य एक आंतरिक जॉगिंग है। दिलदार हंसी आपके चेहरे के स्नायुओं, श्वास के पर्दे और पेट को बेहतरीन व्यायाम देती है। इससे दिल की धड़कन और रक्तचाप क्षणिक रूप से बढ़ता है, सांस तेज और गहरी होती है और आपके खून में प्राणवायु दौड़ने लगती है। एक भरपूर हंसी आपकी उतनी ही कैलोरी जला सकती है जितना कि तेज चलना। हंसी के दौरान आपका मस्तिष्क इतने हार्मोन्स छोड़ता है कि उससे आपकी सजगता शिखर पर आ जाती है। आज का ध्यान है अपना ध्यान। इस ध्यान को हमने ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति से लिया है। ओशो कहते हैं, हर सुबह जब जागें तो अपनी आंखें खोलने से पहले शरीर को बिल्ली की तरह तानें। 3 या 4 मिनट बाद आंखें बंद रहते हुए ही हंसना शुरू करें। 5 मिनट के लिए बस हंसें ही। पहले पहले तो आप इसे सप्रयास करेंगे, लेकिन शीघ्र ही आपके प्रयास से पैदा की गई ध्वनि प्रामाणिक हंसी को जगा देगी। स्वयं को हंसी में खो दें। शायद इस घटना को वास्तव में घटने में कई दिन लग जाएं, क्योंकि हम इससे बहुत अपरिचित हैं, परंतु शीघ्र ही यह सहज हो जाएगा और आपके पूरे दिन का गुण ही बदल जाएगा।
आज के एपिसोड में म्यूजिक लाफिंग ड्रम्स, म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से लिया गया है। डिस्कोर्स दिया गया है प्रीतम छबी नैनन बसी, प्रवचन 16। तो मित्रों, यदि किसी दिन जीवन में सचमुच हमारी नींद खुल गई और हम जाग उठे तो पूरा जीवन ही चुटकुला हो जाएगा। हम जीवन के रंगमंच पर जोकर की तरह हंसकर चले जाएंगे समय के पार। ये गाते हुए लीला 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 Life is just a play, ha 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 ha। ओशो की ब्लेसिंग्स और ढेर सारे प्रेम के साथ हमारा नमस्कार।